ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक पद पर दीपक थापा को पदोन्नत करने का मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। प्रतिनिधि सभा ने सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी विधेयक को बहुमत से किया पारित। राज्य कोष पर अनावश्यक भार न पड़ने के हिसाब से पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों को सुविधा देने का कानून बनाने की तैयारी हो रही है, गृहमंत्री रमेश लेखक ने किया साफ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के आंगिक और संबद्ध कॉलेजों में सोवयू चुनाव होगा कल। विद्यार्थी संगठनों के द्वंद्व के कारण कल 17 कॉलेजों में नहीं हो पाएगा चुनाव। और यूक्रेन में युद्ध विराम संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे वार्ता। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिपरिषद की बैठक ने नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक पद पर दीपक थापा को पदोन्नत करने का निर्णय किया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने नेपाल प्रहरी के 31वें आईजीपी के रूप में थापा को नियुक्त करने का निर्णय किया। बता दें कि थापा कल चैत 5 गते से महानिरीक्षक का कार्यभार संभालेंगे। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाले विधेयक 2081 को बहुमत से पारित किया। बता दें कि मत विभाजन में विधेयक पारित करने के पक्ष में 96 सांसदों के मत थे, जबकि विपक्ष में 49। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया था। विधेयक पर धारागत बहस के दौरान उठे सवालों के जवाब देते हुए संचार मंत्री गुरुंग ने बताया कि दोहरी नागरिकता के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए गैर आवासीय नेपालियों को अतिरिक्त परिभाषित करते हुए नई व्यवस्था की गई है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि राज्य कोष पर अनावश्यक भार न पड़ने के हिसाब से पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों को सुविधा देने का कानून बनाने की तैयारी हो रही है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक के आकस्मिक शून्य और विशेष समय में सांसदों के उठाए सवालों के जवाब में गृहमंत्री ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, महालेखा परीक्षक कार्यालय और संसदीय समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कानून बनाने की तैयारी आगे बढ़ी है। गृहमंत्री लेखक ने साफ किया कि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी अब तक सरकार द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर सुविधाएं ले रहे हैं और अब संसद से कानून बनाकर सुविधा देने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पाथीभरा में केबल का निर्माण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि आंदोलनरत पक्ष द्वारा उठाए गए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थानीय समुदाय की समस्याओं को संबोधित करने के लिए सरकार तैयार है। गृहमंत्री ने विभिन्न विषयों पर अपनी तैयारियों के बारे में बताया, जिनमें मानसून जन्य आपदा प्रभावितों के निजी आवास निर्माण के लिए आवश्यक रकम का प्रबंधन, अपराध पर नियंत्रण लगायत मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक 2081 को सर्वसम्मति से पारित किया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टाराय द्वारा विधायन व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक 2081 को राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। विधेयक पर बहस के क्रम में उठे प्रश्नों के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री भट्टाराय ने विश्वास जताया कि नेपाल के दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों की दृष्टि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विधेयक अधिक उपलब्धि मूलक साबित होगा। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक के विकास और विस्तार से रोजगार सृजन, नेपाल की प्राविधिक जनशक्ति की ख्याति बढ़ाने और विश्व स्तर की जनशक्ति उत्पादन में विश्वविद्यालय सक्षम होगा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के आंगिक और संबद्ध कॉलेजों में कल सोवयू चुनाव होने जा रहा है। हालांकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के 17 आंगिक कॉलेजों में छात्र संगठनों के आपसी विवाद के कारण निर्धारित तिथि पर स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन यानी सोवयू का चुनाव नहीं हो पाएगा। त्रिवि के अंतर्गत आने वाले सभी आंगिक और संबद्ध कॉलेजों में चैत 5 गते सोवयू चुनाव कराने की तालिका पहले ही जारी की गई थी। त्रिवि के देश भर में 62 आंगिक और 1000 से अधिक संबद्ध कॉलेज हैं। छात्र संगठनों के आपसी विवाद के कारण काठमांडू घाटी के अंदर 8 और घाटी के बाहर 9 कॉलेजों में चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भोजपुर जिले की भोजपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के पारपारिक क्षेत्र में आग लगने से 8 घर और 8 पशुशालाएं जलकर नष्ट हो गई हैं। पारपानी टंगटंगे डाडा स्थित इनामे सामुदायिक वन में लगी आग बस्ती तक फैल गई, जिससे ये नुकसान हुआ। जिला प्रहरी कार्यालय भोजपुर के प्रहरी प्रमुख डीएसपी युवराज तिमिल सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं के कारण आग पर नियंत्रण पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह भोजपुर के रामप्रसाद राय गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के दलगांव केराबारी में आग लगने से 5 घर जलकर नष्ट हो गए, ये जानकारी वार्ड अध्यक्ष बाबू कुमार राय ने दी। इसी तरह काभरे पलांचुक जिले के बिथानचुक गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के बोलदे स्थित गोरखनाथ सामुदायिक वन में लगी आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास जारी हैं। बीती रात से लगी इस आग को नियंत्रित करने के लिए प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी और स्थानीय निवासी सुबह से ही प्रयासरत हैं। वार्ड अध्यक्ष कुबेर ढकाल ने बताया कि आग लगने वाला क्षेत्र बस्ती से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन थली डाडा और हर्क भंजियांग में स्थित पेयजल आयोजना खतरे में है। सप्तरी की राजबिराज नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक आज दोपहर लगी आग से लकड़ी के फर्नीचर उद्योग में समेत 3 घर जल गए। स्थानीय दुबीलाल यादव के घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण 3 घर जल गए, जबकि पड़ोसी सुरेश शर्मा का फर्नीचर उद्योग भी आग से नष्ट हो गया। दुबीलाल के घर में रखे 50,000 रूपये नकद, गहने, कपड़े, अनाज सब जल गए। उन्होंने कहा कि आग से शर्मा के फर्नीचर उद्योग में रखी लाखों की लकड़ियां और फर्नीचर और 2 लकड़ी काटने वाली मशीनें भी नष्ट हो गईं। पुलिस के मुताबिक आग में शर्मा की 4 लाख रुपए से अधिक और यादव की 8 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई। स्थानीय निवासियों, पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई, ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय इस साल की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक नंदलाल पोर्टल ने दी। बता दें कि SEE के लिए देशभर में 2,079 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पोर्टल ने यह भी बताया कि काठमांडू और दैलक के 2 कारागारों और भक्तपुर के बाल सुधार गृह से विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाने की व्यवस्था भी की गई है। ज्ञात हो कि SEE परीक्षा चैत 7 गति से शुरू और चैत 19 गति को संपन्न होगी। परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। नेकपा एमआलए की सचिवालय बैठक ने कहा है कि देश में राजतंत्र वापस लाने का कोई आधार नहीं है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय चैसल में आज हुई सचिवालय बैठक ने ये निष्कर्ष निकाला। बैठक में कहा गया कि देश को अलोकतांत्रिक दिशा में वापस ले जाने के प्रयास स्वीकार्य नहीं हैं। इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया गया, ये जानकारी नेकपा एमआलए के उप महासचिव प्रदीप कुमार ग्यवाली ने दी। इसके अलावा बैठक में पार्टी की लुम्बिनी प्रदेश कमेटी में शामिल किए जाने वाले 28 लोगों के नामों को भी मंजूरी दी गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि वो कल मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि वे जमीन के मुद्दे पर बात करेंगे और ऊर्जा संयंत्रों पर बात करेंगे, जो कि एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक उन्हें लगता है कि कई मुद्दों पर यूक्रेन और रूस के बीच काफी बातचीत हुई भी है। ट्रंप का यह बयान अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सऊदी अरब में हुई बातचीत के बाद आया है। यूक्रेन ने सऊदी अरब में हुई बैठक के बाद अमेरिका के 30 दिनों के तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। ये रूस और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त होने की दिशा में पहला कदम होगा। दरअसल अमेरिका कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए रूस को राजी करने में लगा हुआ है। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, उसके बाद से यह दूसरा मौका होगा जब ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक पद पर दीपक थापा को पदोन्नत करने का मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। प्रतिनिधि सभा ने सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी विधेयक को बहुमत से किया पारित। राज्य कोष पर अनावश्यक भार न पड़ने के हिसाब से पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों को सुविधा देने का कानून बनाने की तैयारी हो रही है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने किया साफ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के आंगिक और संबद्ध कॉलेजों में सोवियों चुनाव होगा कल। विद्यार्थी संगठनों के द्वंद्व के कारण कल 17 कॉलेजों में नहीं हो पाएगा चुनाव। और यूक्रेन में युद्ध विराम संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे वार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।